चतुर्वेदी जी थे, एक चौबे थे, चार वेद पढ़े तो चौबे हो गए, और दो और कहीं से और पढ़िया में तो छब्बे हो जाएंगे। चौबों में चौबे तो सब ही, हम छब्बे हो जाएंगे। तो वो गए बेचारे काशी पढ़ने के, थे सीधे साधे, बोले चतुर्वेदी तो हमको बिना वेद पढ़े उपाधि प्राप्त हो गई, चार वेदों के ज्ञाता, दो वेद और पढ़ा दो। तो महाराज वो दो वेद पढ़े उन्होंने, तो चार जो पहले वाले थे वो भूल गए, चार भूल गए दो ही याद रह गए, तो चौबे गए छब्बे बनने और रह गए दुबे। ऐसे ही चोरी, चोर आए चोरी करने और उनकी चोरी खुद हो गई। कल हम लोगों ने लीला में यही तो दर्शन किया, चोरन के सरदार के यहां चोरी हो गई। जय जय श्री राधे। तो चोर जो हैं वो गोस्वामी जी की तो चोरी कर नहीं सके, अपितु उनके चित्त वित्त की चोरी हो गई। कृष्ण करणामृत ग्रंथ में श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने एक भाव व्यक्त किया है, वे कहते हैं मायात पांथा पथि भी मरथ्या दिगंबर को पितमाल नीला विन्यस्त हस्ते नितम बिंबे दूरतः समा कर्षति चित्त वित्तम। पांथाः मायात, अरे राहगीरो, अरे ओ राहगीर कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर, ब्रजमंडल की ओर जा रहे हैं। मायात मत जाओ, भूल के वृंदावन मत जाना, हाँ नहीं किसी काम के नहीं रह जाओगे। मायात पांथा पथि भीम रथ्या, उस वृंदावन की जो रथ्या है, मार्ग है, वो बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर मार्ग है, वहां मत जाना। बोले क्या करें, हमको तो जाना ही है। बोले चलो नहीं मान रहे हो तो चले जाओ, पर एक बात ध्यान से सुन लेना। क्या कहते, वहां एक भवन है बहुत विशाल, उसका नाम है नंद भवन। उस नंद भवन के सामने से मत निकलना, दूर से निकल जाना, उसके निकट से भी मत निकलना और सामने से तो बिल्कुल मत निकलना। दिगंबर, एक नंगा, कैसा नंगा? तमाल नीला, तमाल के समान नील वर्ण वाला एक दिगंबर। दिगंबर का मतलब स्वामी जी ये है कि बालकृष्ण प्रभु, उनको मैया ने कचनी तो धारण कराई है, पर जंगली कछिया कचनी सब ठाकुर जी ने उतार के फेंक दी, और ब्रजरज मंडित हैं, हैं? रेणु तन मंडित ददिमुख लेप किए, ऐसे ठाकुर जी हैं। तो दिगंबर नग्न है, वस्त्र नहीं है, लंगोटी भी नहीं है महाराज। कोपी तमाल नीला, और नंद बाबा की देहली पे विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे, अपने छोटे छोटे करकंजों को अपने नितंब बिंब पर रखे हुए हैं। अरे चोरी करेगा तो चोर हाथ से ही तो करेगा, पर ये ऐसे धूर्त शिरोमणि हैं कि कर कमल तो पधरा रखे हैं अपने कमर पे, और समा कर सति चित्त वित्तम, वहां से जो भी निकलता है उसके चित्त रूपी वित्त की चोरी कर लेते हैं। ये ऐसे हैं। आज वे चोर भी भाग्यशाली हो गए, निष्पाप हो गए और उनके चित्त रूपी वित्त की चोरी हो गई। आहा, तो भोर आए पूछे अजु सांवरो किशोर कौन, भोर आए पूछे अजु सांवरो किशोर कौन। वे निधुआ बधुआ आए और गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, बाबा एक बात तो बताओ, आपने जो श्याम गोर दो किशोर अपने कुटिया की सुरक्षा में रख रखे हैं, वे कौन हैं? गोस्वामी जी हमारा परिचय आप पूछ नहीं रहे हो, फिर भी हम बिना पूछे बता रहे हैं। हम काशी के जाने माने कुख्यात निधुआ बधुआ चोर हैं, ब्राह्मणों ने हमको चोरी के लिए भेजा, पूरी रात हम चक्कर काटते रहे, चोरी का उपक्रम करते रहे, पर जब जब हम आते तो श्याम गौर दो किशोर धनुष बाण लेकर हमको डरा देते। वो कौन थे? अब मेरे नेत्र छटपटा रहे हैं उनके दर्शन के लिए, वे कौन थे? आहा,
सुने करी मौन रहे आंसुदार दिए, सुने करी मौन रहे आंसुदार दिए, सुने करी मौन रहे आंसुदार दिए, सुने करी
गोस्वामी जी के नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बहने लग गई। उनको रोते हुए देखकर चोरों ने कहा, बाबा क्या हुआ? बोले, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, प्रणाम करने योग्य हो, वे मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण ही इस रूप में आपको दर्शन देकर कृतार्थ कर दिए। आहा, अब तो महाराज, वे चोर बोले, महाराज अब तो अपना चेला बना लीजिए, अब तो कृपा कीजिए, चाहते क्या हो? बोले, अब यही चाहते हैं कि वे सांवले सलोने सिपाही कभी हमारी आंखों से टरे नहीं, ये आंखों में हृदय में बसे रहें, बस यही चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, और विधिवत उनको दीक्षा दी है और शिक्षा दी है। तो महाराज, काशी के जो बड़े चोरों के सरदार थे, वे ही जब गोस्वामी जी के शरणापन्न हो गए, भजन की शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली, तब फिर क्या कहना है? एक चमत्कार हो गया। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इस संवाद को लिखा है। श्री गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके चोर कह रहे हैं,
वे दोनों पहिरे दार कहाँ है बाबा बेगी बताओ, वे दोनों पहरे दार कहाँ है बाबा बेगी बताओ, बिनु देखे पड़े न चैन कृपा करी हमरे प्राण बचाओ, बिनु देखे पड़े ना चैन कृपा करे हमरे प्राण बचाओ, वे दोनों पहरे दार कहाँ है बाबा बेगी बताओ, वे दोनों पहरे दार कहाँ है बाबा बताओ, बिनु देखे पड़े ना चैन कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। बिनु देखे पड़े पड़े ना चैन कृपा करे हमरे प्राण बचाओ। पीतांबर बन माल मुकुट धर सुंदर वयस किशोरा, पीतांबर बन माल वयस किशोरा, एक श्याम एक गौर धनुधर चोरन हुके चोरा, एक श्याम एक गौर धनुधर चोरन हुके चित चोरा। बिनु देखे जीवन बचे नहीं, बिनु देखे जीवन बचे नहीं, एक बार और दिखलावो, एक बार और दिखलावो। वे दोनों पहिए तार कहाँ है बाबा देवी बताओ, वे दोनों पहिए तार कहाँ है बाबा देवी बताओ।
अरे भाग्यशालियों तुम हो कौन, काशी के बदनाम चोर निदुआ सिदुआ सिदुआ दो भाई,
काशी के बदनाम
चोर निदुआ
निदुआ सिदुआ दो भाई,
यही हमारो काम नित्य प्रति संपत्ति हरे पराई,
यही हमारो काम नित्य प्रति संपत्ति हरे पराई।
क्यों रहे गए हम आज स्वयं यह भेद हमें समझावो,
क्यों हरे गए हम आज स्वयं यह भेद हमें समझावो।
वे दोनों पहरे तार कहाँ बाबा देवी बताओ,
वे दोनों मेरे दार कहाँ है बाबा देवी बताओ।
गोस्वामी जी ने पूछा कि आपको भेजा किसने, बोले पंडा हमें सिखाए पठाए जा तुलसी की कुटिया, चुरा ले पोथी पत्रा धन संपत्ति धारी लुटिया कुटिया, इसलिए संपत्ति थारी लुटिया सब बस कुटिया में जो कुछ मिले सब तुम्हारा, और पहले जो तुमको दे दिया वो सो तो है ही है, और बस पोथी हमको दे देना, एक ही बात है, पोथी चुराकर हमको दे देना। इसलिए आप कृपा करके बतावें, सत्य सत्य बतावें ये चोर कौन है। गोस्वामी जी रोने लग गए, बोले भैया तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो, ऐसा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, धन्य है धन्य है धन्य है। गोस्वामी जी आनंदित हो गए और आज चोरों का जीवन भी सदा सर्वदा के लिए परिवर्तित हो गया। बोलो देखो, महापुरुषों के साथ चाहे जैसी कोटि के जीव जुड़ जाएं, उनका भी कल्याण ही हो जाता है। इस प्रकार से यह एक विलक्षण घटना गोस्वामी जी के जीवन में हुई, यह एक विलक्षण घटना थी। गोस्वामी जी ने विचार किया कि ऐसी वस्तु अपने पास नहीं रखना चाहिए जिस वस्तु के कारण प्रभु को पीड़ा होवे। सुख सेज पर शयन करने वाले श्री रघुनाथ जी और आज रात भर उनको पहरेदारी करनी पड़ी। गोस्वामी जी का हृदय व्याकुल हो गया और उन्होंने अपना कमंडल लुटिया, जो अपनी नित्य की सामग्री थी, जो अत्यंत उपयोगी, जो उनका अपना निजी आसन बासन आदि था, उसको भी आज लुटा दिया, कुछ भी नहीं रखा। एक वस्त्र जो उनके शरीर पर था वही एकमात्र रह गया और रामचरितमानस की पोथी उन्होंने अपने मित्र टोडरमल जी को दे दी। ये आप अपने पास, क्योंकि वे काशी के बड़े जमींदार, एक तरह के राजा ही, राजा जैसा ही ऐश्वर्य उनका था, तो उन्होंने पोथी तो दे ही ली और एक प्रार्थना और की। बोले अस्सी घाट पर हमने कोठी बनवाई है, मकान बनवाया है, सो हमारी इच्छा है कि आप वहीं विराजें। गोस्वामी जी ने कहा मकान तुमने अपने रहने के लिए बनवाया है और एक जगह किसी गृहस्थ के यहाँ रह चुके हैं और रहकर अनुभव भी कर लिया, अब दूसरी जगह कहाँ गुजारा होगा, इसलिए आप पोथी को सुरक्षित रखो, हम कहाँ रहेंगे इसकी चिंता आपको नहीं रखनी चाहिए। देखो एक बात व्यवहार की है, लेकिन विरक्तों को, साधकों को विशेष रूप में स्मरणीय है, ध्यान देने योग्य है। सदगृहस्थ प्रेमी भक्त के विशेष आग्रह पर यदि किसी विशेष हेतु से विरक्त को, साधक को जाना पड़ जाए तो वहां जावे, पर वहां वहीं आसन जमा के न रह जाए। इसमें दोनों का लाभ है, दोनों का लाभ इसलिए है कि भोगी पुरुषों के बीच रहकर साधु का ज्ञान वैराग्य निश्चित प्रभावित होता है, कई बार उसकी रहनी प्रभावित हो जाती है। और बड़ी हानि क्या होती है कि फिर वह विरक्त संतों के बीच में नहीं रह पाता। क्यों? इसलिए नहीं रह पाता, बढ़िया बढ़िया, भगत तो भगत ही हैं, बाल भोग अलग और राज भोग अलग और फिर ब्यारू अलग है, कभी घना घना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। और फिर जब विरक्तों के बीच में रहने का अभ्यास, क्योंकि उनका भोजन उनको प्रिय नहीं लगता, स्वाद युक्त भिक्षा चाहिए, अचार खाने का मन करेगा, चटनी खाने का मन करेगा, नमक खाने का मन करेगा, मिर्च खाने का मन करेगा, तो भैया फिर भगवान तो नहीं मिलेंगे, वेश चाहे जैसा बना लो, भजन के मार्ग में प्रगति नहीं हो पाएगी। क्योंकि तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जितेर। तब क्या करें, भोजन छोड़ दे। भोजन छोड़ने की बात नहीं है, पदार्थों को भोगने की जो लोलुपता है उस लोलुपता का त्याग कर देना चाहिए, और उस लोलुपता का त्याग विवेक से हो जाता है। देखो, बढ़िया से बढ़िया रबड़ी और बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला, जिसको देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, वो उसके संबंध में हम विचार करें कि यह पार्थिव जगत की पार्थिव वस्तु है, पार्थिव पदार्थ है, नाशवान जगत की नाशवान वस्तु है। मृदेव सत्यम की तरह, अरे रसगुल्ला बना तो कैसे बना, कैसे बना, छेना से बना, छेना कैसे बना, दूध से बना, दूध कैसे बना, गाय ने घास चरी तो दूध बना। अब तृण हो, भूसा हो, दाना हो, चारा हो, ये सब धरती पार्थिव जगत की वस्तु है कि नहीं, तो पार्थिव पदार्थों का उसने भक्षण किया और उससे दूध बना। तो वो मूल में घास मिट्टी पत्थर में और उसमें कोई भेद नहीं है ज्ञानी की दृष्टि में, वो पार्थिव है। ठीक है, अब देखने में बहुत आकर्षक लग रहा है, बड़ा भारी इसमें स्वाद है। कहाँ है स्वाद? हमारे न्याय शास्त्र के विद्वानों ने रसनेन्द्रिय को जिह्वाग्रवर्ती इंद्रिय कहा। रसना क्या है? बोले जिह्वाग्रवर्ती, जीव के अग्रभाग में रसनेन्द्रिय है, इसलिए बस यहां तक का स्वाद है बस। इसलिए कड़वी दवा लोग ऐसी जीव निकाल के भीतर रख लेते हैं, फिर उसका पता नहीं चलता कड़वी है कि मीठी, ऐसा करते हैं कि नहीं। इसका मतलब यहां टेंटुआ में कोई स्वाद नहीं है, वो तो जीव के नोक पे स्वाद रखा हुआ है। और उत्तम से उत्तम पदार्थ जो बाहर देखने में बड़ा उत्तम लग रहा है, मुख में उसको डाल करके और एक मिनट नहीं 10-20 सेकंड में भी मुंह से बाहर कर दो, तो वह घृणित हो जाता है, देखने योग्य नहीं रह जाता। मुंह में ग्रास देकर के लोग, कंकड़ आदि आ जाता तो ग्रास को मुंह से बाहर निकाल देते हैं, तो वह देखने योग्य नहीं रह जाता। और कथंचित वो गले के नीचे उतर गया और फिर उल्टी हो गई, बमन हो गया, तो उसको देखकर दूसरों को भी घृणा उत्पन्न हो जाती है। और कथंचित बमन भी नहीं हुआ, उगला भी नहीं गया, पच गया, तो उसका अंतिम परिणाम मल है, और मल भी पृथ्वी पर गिरता है और अंत में वो फिर मिट्टी हो जाता है। मिट्टी का खेल है, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल गया। तो अब रसगुल्ला और रबड़ी और मालपुआ देखकर उसके मुख में जाने पर उसका स्वरूप क्या है, गले के नीचे उतरने के बाद स्वरूप क्या है, बमन के बाद उसका स्वरूप क्या है, और मल त्याग के बाद उसका स्वरूप क्या है, इस बात का विवेक यदि किसी व्यक्ति को हो जाए भगवान की दया से, संतों की दया से, तो जो कुछ उसे मिल जाएगा उसी में परम संतुष्ट हो जाए। देखो राम जी, जड़ भरत जी के सामने उनकी भाभियां खली और भूसी रख देती थी। हम अपने मन से नहीं करें, भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है, चोकर, आटे को छालने के बाद क्या बचता है, चोकर, वो चोकर रख देती थी, खली भूसी रख देती खाने के। बच गया साग रोटी, बच गई जला हुआ अन्न, बच गया खुर्च करके रख देती सामने। और श्री जड़ भरत जी महाराज ऐसे पाते जैसे अमृत का उपभोग कर, बड़े प्रेम से पा जाते। और विचित्र बात तो ये थी कि शेर दो शेर रख दे तो भी पा जाती, ये नहीं कहते ये ज्यादा है, और कम से कम कोई रख दे तो ये नहीं कहते कि हमको और ज्यादा जरूरत है। और घर के सब लोग जो अधाधुंध खाए चले जा रहे थे, वे तो सब ऐसे थे, और जड़ भर जी
खूब तगड़े थे,
निश्चिंत रहते, मस्त रहते, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उद्वेग नहीं, विवेक पूर्वक पदार्थों का उपभोग बंधन कारक है। भूतैर महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशीष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भूतैर माधवी या इमाह पुरो विभू निर्माय। जिन भगवान ने पंच महाभूत आदि के द्वारा महत्त्वादि के क्रम से पंच महाभूत आदि के द्वारा इन तत्वों से इन शरीरों का निर्माण किया, भगवान ने तो निर्माण किया नहीं शरीरों का, पिंड ब्रह्मांड के निर्माता भगवान है। और निर्माण करने के बाद यद अमूषु शेते, निर्माण करने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं, शेते अमूषु इन शरीरों में भगवान शेते बैठे नहीं है, ठाट से सो रहे हैं। शेते का अर्थ है आनंद में विश्राम कर रहे हैं। इसका मतलब ये सब जितने मकान है सब भगवान ने रहने के लिए बनाए, सब में भगवान निवास करते हैं। मच्छर को भी भगवान ने ही बनाया है, कितना छोटा हेलीकॉप्टर बनाया भगवान ने अपने घूमने के लिए, और उसी में बैठ करके भगवान घूमते हैं विचरण करते हैं। और अब उनके वाहन में पेट्रोल की कमी पड़ जाती है तो कहीं भी बैठ करके ऐसा पंप दिया हुआ है कि तुरंत खींच लेता है और फिर उड़ जाता है। सब जीवों में भगवान यद अमूषु शेते इनमें विश्राम कर रहे हैं। और भूंगते क्या कर, भूंगते गुणान, गुणान भूंगते षोडश षोडशात्मक गुणान भूंगते, वह परमात्मा ही षोडश, षोडश माने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, कितने हो गए 15 नहीं पंच तन्मात्राएं, तन्मात्रा रूप सुगंध शब्द स्पर्श, पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पंच तन्मात्रा होगी 15 और 16वां हो गया मन, इनके द्वारा भोग करते हैं गुणान भूंगते। आप लोग कहेंगे भगवान भोग करते, बोले हां ये बात बिल्कुल सही है। एक दिन हमने कहा भी था कि भोक्ता एकमात्र भगवान है। मृत्यु हो गई और आंख है पर आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, नाक सूंघती नहीं है, जिह्वा बोलती नहीं है, हाथ चलते नहीं है, पांव चलते नहीं है, वो सारी क्रिया कौन कर रहा था, नेत्र गोलक में बैठ करके रूपक ग्रहण कर रहे थे भगवान, कर्ण कुहर में बैठ करके शब्द ग्रहण कर रहे थे भगवान, सब कुछ करने वाले तो भगवान हैं। तो बोले जब भगवान ही भोग कर रहे हैं तो फिर फल किसको भोगना पड़ेगा, जब सब कुछ भगवान ने किया भगवान ने भोगा तो फल किसको भोगना चाहिए, स्वर्ग भोगे तो भगवान, नरक भोगे तो भगवान, जीव बेचारे को काहे को विपत्ति में पड़ना पड़ता है। इसका उत्तर एकमात्र यही है कि वस्तुतः जीव और प्रकृति भोग्य है और भगवान भोगता है, पर जीव इस सिद्धांत को ठुकरा करके स्वयं ही प्रकृति का भोक्ता बन जाता है, इसी के कारण उसे ये सब भोगना पड़ता है। मैं भगवान का भोग्य हूँ, भगवान एकमात्र भोक्ता है, ये स्वीकार कर ले तो निष्पाप हो जाए, पर ये स्वीकार नहीं करता। इसलिए पदार्थों को भोगने का जो लौल्य है उसका त्याग कर देना चाहिए, भगवान की कृपा से, भगवान नाम की महिमा से, सत्संग से, कथा कीर्तन से, वैराग्यवान संतों के संग से, और इस लोलुपता का त्याग। इसलिए भैया विरक्त को अधिक गृहस्थों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, जितनी देर कथा वार्ता कीर्तन सत्संग हो भगवत चर्चा हो उतनी देर का संपर्क अच्छा है, भगवत संबंध। और इसके अतिरिक्त ज्यादा संपर्क रखने से उनकी रहनी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। एक बात, ये तो विरक्त को घाटा है और गृहस्थ को घाटा ये है कि कहीं घर में भजन करने वाले साधु की वृत्ति को देखकर लड़के बच्चों की समझ में आ गया, यही सबसे बढ़िया, तो उस बेचारे का घर उजड़ जाएगा, एक समस्या तो ये। और दूसरी बात ये है, हाँ घर में साधु आते आते फिर साधु बन जाते, कोई ना कोई संस्कारवान घर छोड़ के निकल जाते हैं, एक समस्या तो ये है। और दूसरी समस्या ये है कि कई बार ऐसा होता है हमारे अपने चित्त की मलिनता के कारण हमें सत्पुरुषों में भी कई बार दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं, तो उनके प्रति जैसी श्रद्धा पहले रही वैसी श्रद्धा नहीं रह पाती है। महात्माओं की रहनी क्या है इस रहस्य को सामान्य जीव समझ नहीं सकते हैं। एक घटना हम आपको सुनाते उससे समझ में आ जाए। हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा, उच्च कोटि के महात्मा थे। रामनवमी का दिन था और वे 8 बजे तक सो रहे थे। कितने बजे तक? गर्मी के समय में 8 बजे धूप हो जाती है और मच्छरदानी लगा के छत पे आराम से सो रहे। हमने महाराज जी से 2-3 बार पूछा, महाराज जी जगा दें? महाराज बोले नहीं, खड़े रहने दे, बोलो मत। वो उठे, उठ करके, आयु भी उनकी 100 वर्ष के करीब की थी, चलते फिरते थे, उस आयु में भी वृंदावन की एक परिक्रमा कर लेते थे। तो उठे तो महाराज जी उनको बहुत आदर देते थे, महाराज ने उनको प्रणाम किया। महाराज ने कहे, कहो बाबा आज कहां कहां घूम आए और हम बाहर बैठकर पाठ कर रहे थे, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, और महाराज जी उनसे बातचीत कर रहे थे। कहो बाबा आज कहां कहां घूम आए। बाबा बोले, तोतले बोलते थे बाबा, भट्टमाली जी, भक्तमाली जी को बोले, भट्टमाली जी मैं आज अयोध्या चला गया था। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, अयोध्या जी गए सब ठीक तो है? बोले हाँ, राम घाट पर सरयू जी में स्नान किया और फिर श्री अयोध्या जी की पंचकोसी की परिक्रमा किया और हनुमान गढ़ी में हनुमान जी की मंगला का दर्शन किया और कनक भवन में दर्शन करके और अब आया हूं, अब जमुना जी स्नान करूंगा। हमने सोचा बाबा ने सपना देखा होगा, सपने में चले गए होंगे अयोध्या जी। महाराज जी बोले, और बढ़िया हुआ आज रामनवमी थी, अयोध्या की परिक्रमा हो गई, दर्शन मेला हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और कोई सब ठीक तो है ना अयोध्या जी में, कोई घटना तो नहीं घटी? वो बोले हाँ और तो सब ठीक है, जौनपुर की एक बुढ़िया आई थी वो रामघाट में सरयू स्नान करते करते डूब गई, वो मर गई, और तो सब। अब ये बात हमारे ध्यान में रह गई कि उन्होंने कहा। उसके बाद एक राम सेवक दास जी नाम के संत आए तो महाराज जी ने उनसे पूछा, कहो अयोध्या रामनवमी का दर्शन कर? बोले हाँ कर आए दर्शन, और कोई विशेष नई खबर? अरे बोले महाराज जी वो रगड़े बाबा के भक्तों में से एक बुढ़िया थी, वो ठीक रामनवमी के दिन इतने बजे रामघाट पे सरयू जी में जल समाधि हो गई उसकी। तो हमको लगा, फिर मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी बोले अब समझ लो पंडित जी, आप कह रहे थे जगा दें, अब वो तो शरीर उनका यहाँ पड़ा था और वे सूक्ष्म देह से परिक्रमा कर रहे थे तो कितना अनर्थ हो जाता। अब बताओ कौन समझे महात्माओं की रहनी। आप सत्य माने, हमने ऐसे संतों का दर्शन किया है पूरी रात भजन करते, अभी भी वे महात्मा हैं, पूरी रात भजन करते और जब सबके उठने का समय होता तो तान दुपट्टा सो जाता। लोग कहते रे राम राम कैसा महात्मा है, देखो सवेरे सवेरे तक सो रहा है। जिन्होंने अपने भीतर से यह निश्चय कर लिया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु पादारविंद की प्राप्ति है और दूसरा कोई लक्ष्य हमारे जीवन का नहीं है, उनका खाना पीना सोना जगना सब इसीलिए होता है, उनकी साधना तो निरंतर चलती रहती है। इसलिए महाराज निकट रहकर भी संतों की रहनी का भेद समझ पाना सबके बस की बात। तो कई बार बाबा क्या होता है कि निकट रहकर वैसा भाव नहीं रह जाता है। इसलिए भिक्षा जितनी देर करनी हो उतनी देर संपर्क रहे हो, बाकी फिर तुम अपने रास्ता हम अपने रास्ता। गोस्वामी जी बोले कि भाई एक घर में रह के देख लिया, अब दूसरे घर में रहने का विचार नहीं है। क्योंकि टोडरमल जी ने वो जो 80 घाट पर जो मकान है ना, टोडरमल जी ने रहने के लिए बनवाया। तब उन्होंने कहा नहीं, हम अपने पुराने मकान में ही जीवन भर रहेंगे, वो पूरी की पूरी कुटिया, वो पूरा का पूरा भवन आपके लिए, आप रहेंगे अकेले रहेंगे जैसे चाहें वैसे रहेंगे, जो आप समय निर्देशित करेंगे उतने समय में हम आपका दर्शन करने आ जाया करेंगे। गोस्वामी जी ने उनके प्रेमाग्रह को स्वीकार कर लिया और फिर अंतिम क्षण तक गोस्वामी जी 80 घाट पर ही रहे। आज भी गोस्वामी जी की वो जगह है, कुटिया है, जहां गोस्वामी जी ने अपना शेष जीवन विकास किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते दईसो लुटाए जानी चौकी राम राय, सब लुटा दिया और पोथी भी रख दी। अब ये बात काशी में प्रसिद्ध हो गई कि उन्होंने पोथी भी रख दी और अब अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो अब चोरों का भी, अब जो ये था ना कि पोथी चुरवा लो, अब चोरी का कारण ही नहीं रहा तो चोरी होगी कहां से, चोरी का कारण नहीं रहा तो चोरी नहीं। भय जो होता है वो संसार की किसी भी वस्तु का संपर्क होगा तो उससे भय हो जाए, किसी भी पदार्थ में आसक्ति होगी तो वहां से फिर भय हो जाए। और अनाशक्त महात्मा कुछ है ही नहीं तो काहे का भय होगा, जड़ भरत जी को काहे का भय होगा, ऋषभ देव जी को कौन सा भय होगा, कोई भय नहीं होगा, सुखदेव जी को कौन सा भय होगा, सनकादिकों को कौन सा भय होगा, सर्वथा असंग महापुरुष हैं, इनको भय नहीं हो सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी महाराज ने 80 घाट पर निवास किया। अब 80 घाट की ही एक घटना है, बहुत सुंदर घटना है। प्रियादासी ने उस घटना का वर्णन किया है कि यो विप्रतन त्याग दिया चली संग लागी,
कि यो विप्रतन त्याग दिया चली संग लागी, दूर ही दे देती कियो चरण प्रणाम है, दूर ही देखी कियो चरण प्रणाम है, बोले यो सुहागवती मर्यो पति हों सती, बोले यो सुहागवती मर्यो पति हो सती,
अब तो निकस गई जाऊं से रो राम है, बोली के कुटुंब कही जो पे भक्ति करो सही, बोली के कुटुंब कही जो पे भक्ति करो सही,
बोली के कुटुंब कही जो पे भक्ति करो सही,
कही तब बात जीव दियो अभिराम है,
कही तब बात जीव दियो अभिराम,
भय सब साधु व्याधि में तिले बिनुताती जाकी बात रहे तो न सूझे श्याम धाम है, भय सब साधु व्याधि में तिले बिनुताती की बास रहे तो ना सूझे श्याम गाम।
एक और काशी के ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे और अच्छे वैदिक कर्मकांडी अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। लेकिन ऐसा ही है, ठाकुर जी की लीला ही है। तुलसीदास जी के प्रति उनके हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं थी, प्रेम भी नहीं था, श्रद्धा भी नहीं था, एक प्रकार से वे विरोधी ही थे। और उनका देह छूट गया, अब उनका उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और गोस्वामी जी वहीं अस्सी घाट पर ही अपनी कुटिया में बैठ करके प्रेम से भगवान नाम जप कर रहे थे। और उसी समय वो ब्राह्मण की जो पत्नी है वो सती होने के लिए जा रही थी, तो उसने जैसे ही प्रणाम किया, गोस्वामी जी ने विचार नहीं किया, सहज ही उनकी वाणी से, भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से, उनकी वाणी से निकला सुहागवती सौभाग्यवती भव। यही बात प्रियादासी करें, कियो विप्र तन त्याग तिया चली संग लागी, दूर ही ते देख कियो चरण प्रणाम। दूर से ही उस ब्राह्मणी ने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। बहुत ध्यान से सुने महाराज, दूर ही थे, दूर से ही प्रणाम किया। इसमें एक सनातन धर्म की मर्यादा की शिक्षा दी जा रही है, माताओं को प्रणाम करना चाहिए, पर दूर से ही साधु संतों को प्रणाम करना चाहिए, ये मर्यादा की शिक्षा। दूर ही थी, दूर से ही प्रणाम किया। और महात्मा तो अपने जैसे ही होते हैं, हैं? वो अपने जैसे ही सबको देखते हैं। उसके तो नेत्रों में पति के वियोग में आंसू थे, और गोस्वामी जी ने यही समझा कि इसके हृदय में इतनी भक्ति है कि ये भक्ति के कारण इसके नेत्र सजल हो रहे हैं। तो महाराज किसी को देख लें आंसू महात्मा आंख में, फिर तो क्या कहना, इनका हृदय द्रवित हो जाता है। तुरंत बोले सौभाग्यवती भव। उसने कहा महाराज हमें तो सती होने जा रही हूं पति के पीछे चल के, और आप सोच विचार के आशीर्वाद नहीं देते, आपने कह दिया सौभाग्यवती भव, आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी। सामुद्रिक के अनुसार 32 दांत जिसके मुंह में होते हैं उसकी बात प्रायः सच्ची निकलती है, यदि वो सत्य का उपासक होए तो। दिन भर ही झूठ बोले तो गाय को सच्ची निकलेगी। और यहां तो जन्म से ही 32 दांत मुख में हैं, और जन्म से ही राम बोले, तो इनकी बात कैसे झूठी हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे स्वभाव में नहीं है किसी को आशीर्वाद देना या किसी को कुछ शाप देना, साधक को दोनों से ही बचना चाहिए। व्यास न देत आशीष शराब, व्यास न देत आशीष शराब, आशीष भी नहीं और शराब भी नहीं, तब क्या करे, कोई आवे तो आशीर्वाद न दे, उसको समझा दे भैया सीधे ठाकुर जी से मांग लो, हमें भी यदि कुछ आपको विश्वास है कि हमारे पास कुछ है, हमें कुछ मिला है, कहां से मिला, ठाकुर जी से मिला है ना, तो सबके दाता राम, इधर उधर क्यों भटकते हो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मंगल करेंगे, बस हो गया, भगवान कृपा करेंगे। हमारे पूज्य महाराज जी से एक सज्जन आए और विशेष आग्रह करने लगे, महाराज हमें तो आशीर्वाद दे दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए हमारा दुख दूर हो जाए। महाराज जी ने बड़े शांत भाव से कहा, कहा राम जी मैं नित्य प्रति विश्व कल्याण की प्रार्थना करता हूं, आप विश्व से बाहर नहीं हैं। क्या क्या कहा महाराज जी ने, मैं नित्य प्रति विश्व कल्याण की प्रार्थना करता हूं और आप विश्व से बाहर नहीं हैं। पर फिर भी कई बार महत्पुरुषों की वाणी से कोई शब्द निकल जाता है, तो वो क्या है, बोले वो है भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा से ऐसी बात उनकी वाणी से निकल गई। गोस्वामी जी ने कहा मेरे स्वभाव में नहीं है किसी को सौभाग्यवती आशीर्वाद देना। अब तो ऐसा विचित्र समय आ गया कि पर्चे में छाप दिया जाता है जिन माताओं की गोद सूनी हो वहां अमुक महानुभाव गोद भराई करते हैं। अरे भैया गोद ही भरना था तो घर छोड़ के साधु ही काय को बन गए, अपना घर बसाते, लड़के बच्चे पैदा करते। इसलिए ये सब भक्त के कार्य नहीं है, साधक के कार्य नहीं है, इन सबसे दूर रहना चाहिए। गोद भराई के पर्चे तक छप जाते हैं। हाँ, महात्माओं में श्रद्धा रखने वालों के को अनेक लाभ मिल जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन स्वयं इस कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा हमारे अभ्यास में नहीं है, लेकिन कैसे निकल गया ये रघुनाथ जी जाने। और जब भगवान की इच्छा से वाक्य निकल गया तो ये पूरा भी हो जाएगा, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तुम्हारा कैसे जीवित होगा, मरा हुआ तो जीवित होता नहीं। तो ले तुम्हारे पतिदेव और तुम पूरे परिवार के सहित अब राम नाम के जप का संकल्प करो, भगवत भक्ति का भजन का संकल्प करो तो जीवित हो जाओगे। अब तो महाराज ये बात वहां तक पहुंच गई, मृतक शरीर को 80 घाट लौटा करके लाया गया और गोस्वामी जी ने भगवान नाम संकीर्तन किया और संकीर्तन करते ही वो मरा हुआ विप्र जीवित होकर के बैठ गया। जैसे ही जीवित होकर के बैठ गया, लिखा है बोली के कुटुंब कही जोपे भक्ति करो सही, सही भक्ति ईमानदारी से भजन करो तो ये जीवित हो जाएगा। सबने स्वीकार कर लिया। अब महाराज उस परिवार ने ही नहीं, उस मृतक के पीछे जितने गृहस्थों के परिवार जितने लोग जा रहे थे वो सबके सब भक्त हो गए। ये भगवान ने लीला की। भय सब साधु, सब साधु हो गए, सब अच्छे साधक हो गए। और व्याधि मैटिले विमुखता की, इतना बड़ा पंडित इतना बड़ा विद्वान और उसमें विमुखता की व्याधि लगी गई थी, वो विमुखता रूपी व्याधि हट गई और महाराज वो भगवान का भक्त हो गया। ध्यान से सुनो, समझने योग्य श्लोक है, भगवान व्यास की वाणी है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्।